स्वयं रूपाकदामयं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी गणवाणी हरि प्रिय वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज से एक विशेष ये सत्र है गौर कथामृत, वैसे इसको गौर कथा कहा जा सकता है। जनरली हर संप्रदाय में कृष्ण कथा की प्रमुख प्राधान्यता है। कृष्ण कथा को सुनना, कृष्ण कथा की चर्चा करना और कृष्ण कथा का सर्वाधिक वितरण करना। तो लेकिन हम श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं। तो इस संप्रदाय की एक विशेषता है। बाकी संप्रदाय में और हमारे संप्रदाय में सब कुछ अधिकतर एक समान है, लेकिन इस संप्रदाय की खासियत क्या है कि साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस संप्रदाय में अवतरित होते हैं और अवतरित होकर अपना जो भगवत भाव है उसको प्रकट नहीं करते, बल्कि जो भक्त का भाव है उसको अंगीकार करते हैं और भगवान का जो सर्व कृष्ण देन है कृष्ण भावना उसका वितरण करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का चरित्र ये दो तीन दिन हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र का वर्णन करने के लिए व्यक्ति को निष्कपट होना चाहिए और उस व्यक्ति का प्रेम नित्यानंद प्रभु के लिए सर्वाधिक होना चाहिए। तो मेरे लिए सोच रहा था कि ये सारे गुण अत्यधिक कठिन है, बल्कि जितने भी हम आचार्यों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया है, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण किया है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम हैलो नेता है, सच्ची सुता हैलो जय बलराम हैलो नेता है। तो जो सच्ची सुत है वो कृष्ण है और जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु है। तो बलराम के ही विस्तार है, लक्ष्मण है, रावण आचार्य है, वही अनंत शेष के रूप में प्रकट होते हैं और अपने अनंत फलों के द्वारा अपने अनंत मुखों के द्वारा भगवान का गुणगान करते हैं। इसलिए उन्हीं भक्तों ने गौरांग महाप्रभु के ग्रंथों को कंपाइल किया है जिनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा है। चैतन्य चरितामृत के संकलन करता कौन है? कृष्णदास कविराज। चैतन्य भागवत किसने कंपाइल किया है? वृंदावन दास ठाकुर। और ऐसे चार ग्रंथ हैं जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें उसमें सर्वाधिक जानने को मिलता है। एक है चैतन्य महाप्रभु आपका प्रकट होने के तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे मुरारी गुप्त, उन्होंने चैतन्य चरिता महाकाव्य एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की और उसमें उन्होंने जो जो अपने आंखों से देखा था, क्योंकि मुरारी गुप्ता कृष्ण लीला में हनुमान है, चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकटतम संगीत है, पार्षद थे, उन्होंने जो जो देखा तुरंत लिखा। तो ऐसे मुरारी गुप्त ने संस्कृत में चैतन्य चरित्र लिखा, तो लेकिन बहुत भक्तों को समझ में नहीं आता था संस्कृत सर्वसाधारण लोगों के लिए बहुत कठिन था। फिर वृंदावन दास ठाकुर जब नित्यानंद प्रभु ये जगत में थे तो नित्यानंद प्रभु ने अपने जो आखिरी शिष्य है जिनका नाम था वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर को उन्होंने दीक्षा दी और वृंदावन दास ठाकुर को कहा कि हे वृंदावन दास, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का क्या करो, वर्णन करो। तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उन्होंने चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ लिखा, उसका पहले नाम चैतन्य मंगल था। तो वो ग्रंथ इतना असीम है कि कृष्णदास कविराज जब अपना बुक लिखते हैं तो अपने बुक में वृंदावन दास ठाकुर का बहुत गुणगान करते हैं। ये भक्त का एक विशेष गुण है। भक्त में भक्ति में उन्नति का गुण क्या है कि दूसरे भक्तों के लिए हमारे हृदय में एप्रिशिएशन का भावना दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए, प्रशंसा का भाव। तो कृष्णदास कविराज बहुत निम्न भाव धारण करते हैं लेकिन सर्वाधिक किसका गुणगान करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर का। वो कहते हैं कृष्ण लीला व्यास, कहते हैं कि कृष्ण लीला के व्यास तो वेद व्यास है लेकिन चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य लीला का वर्णन किया। फिर उसके बाद एक ग्रंथ और लिखा गया जिनके राइटर थे कौन, लोचन दास ठाकुर। मैं अभी दो दिन पहले एक ग्रंथ जहां लिखा गया उस स्थान में गया था दर्शन करने, मायापुर से 2 घंटा दूरी पर। तो वो बहुत अद्भुत स्थान है, उनके गुरु थे नरहरी सरकार। उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इतना संस्कृत का ग्रंथ है, सारे बंगाली लोग चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य लोचन दास को आज्ञा दी। लोचन दास का विवाह बचपन में हुआ था लेकिन घर कभी नहीं जाते थे, गलती से घर गए ससुराल और ससुराल पहुंचे तो उन्होंने एक युवती जा रही थी जल लाने के लिए कुएं पर, उसको पूछा, ओ माँ ये इनका घर कहाँ है, अपने ससुर का नाम लिया होगा। तो उसने कहा मगर में कहते ना उदी के जाओ, उस तरफ जाओ। तो वो गए तो जब घर में पहुंचे तो जिसको उन्होंने माँ कहकर पुकारा था वही माँ माता जी क्या कर रही थी, पानी लेकर उनके लिए हाजिर थी। तो उन्होंने कहा अभी मेरे सारे संबंध का यहाँ तिलांजलि सैक्रिफाइस कर रहा हूं, अभी फिर से मैं इस गांव में और इस स्थान में नहीं आऊंगा। तो लोचन दास ठाकुर जब जाते हैं श्रीखंड विलेज था और नरहरी सरकार फिर उनको आज्ञा देते हैं लोचन एक ग्रंथ का निर्माण करो। तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक पत्थर के ऊपर बैठे और एक अमेजिंग ग्रंथ दिया हमें। वो कौन सा था, चैतन्य मंगल। वो ऐसा स्थान है जब हम 2 दिन पहले वहां थे तो लगा कि 3-4 दिन यहाँ ही रहना चाहिए एक छोटे से भक्तों के ग्रुप के साथ। इतने सारे वट वृक्ष थे, बहुत सारे वट वृक्ष बड़े बड़े थे, निखिल प्रभु भी हमारे साथ थे। तो वहां लोचन दास ठाकुर ने वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ये चैतन्य मंगल लिखा। और उसकी खासियत क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं बाकी ग्रंथों में नहीं है वो उस ग्रंथ में है। फिर जब भक्तों के पास सुनने के लिए 2 ग्रंथ है, क्योंकि डिवोटी मीन्स जो कृष्ण कथा में आनंद लेता हूं, इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, मंचितः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। डिवोटी का टाइटल लगाना इजी है लेकिन हमें अधिक से अधिक रममान होना है कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाएं कृष्ण कथा। तो जब वृंदावन के डिवोटीज बहुत सारे थे और वृंदावन के भक्तों की खासियत क्या थी, जैसे संध्या का समय हो जाता था सारे एकत्रित होते थे कौन से मंदिर में, गोविंद देवालय, गोविंद देव का जो बड़ा मंदिर है ना वहां सारे वैष्णव एकत्रित होते थे और वहां एक डिवोटी चैतन्य भागवत पढ़ा करते थे डेली और उनके मुख से सारे वैष्णव वृंदावन के गौड़िया वैष्णव गौरांग महाप्रभु का गुणगान सुना करते थे। तो चैतन्य भागवत को जब सुना 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 और वो बुक सुन सुन के खत्म हो गया तो भक्तों को एक कमी महसूस हो गई। क्या कमी महसूस हो गई? कृष्ण कथा कभी एंड नहीं होनी चाहिए। हमें क्या होता है, शुरुआत होने से पहले सोचते हैं खत्म होने का समय कौन सा है। तो वहां जब ये भक्त सुन रहे थे वृंदावन दास ठाकुर का बुक, सोचो 400 साल पहले चैतन्य भागवत, तो उस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की केवल अधिकतर नवद्वीप की लीलाएं हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं चैतन्य चरित्र एक नदी के समान है। किसके समान है? हाँ, तो मैं अभी चैतन्य लीला नहीं सुना रहा हूं आपको, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूं इधर उधर ना। तो चैतन्य लीला एक नदी के प्रवाह के समान है और इस प्रवाह के दो तट है। कौन से दो तट है? एक नवद्वीप और दूसरा है जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु के ये दो अधिकतर लीलाएं वही है, नवद्वीप लीला और दूसरा है जब वो संन्यास के ऊपर जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो जगन्नाथपुरी की जो उनकी कृष्ण विरह की जो लीलाएं हैं। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर ने 99% या 95% चैतन्य भागवत में नवद्वीप लीलाओं का वर्णन किया है, संन्यास के पहले की लीलाओं का। तो भक्तों ने जब ये सारी लीला कथा सुनी तो भक्तों को लगा कि हमें चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाएं भी सुननी है। तो उन्होंने सोचा, अरे कोई बुक तो है नहीं उसके ऊपर, तो किसको ढूंढे। तो उन्होंने एक डिवोटी का नाम याद आया, और कौन थे वो? कृष्णदास कविराज। क्योंकि कृष्णदास कविराज की आयु उस समय 90 साल से भी अधिक थी और कृष्णदास कविराज राधापुर में निवास करते थे और वहां रघुनाथ दास गोस्वामी से, रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 3 घंटा कंटिन्यूअसली चाहे लेक्चर सुनने के लिए भक्त हो या ना हो, जैसे प्रभुपाद ने कहा या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, कोई नहीं है तो आप दीवारों को सुनाओ। किसको सुनाओ? दीवारों को सुनाओ। एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, भक्तों ने बहुत बड़ा हॉल बुक किया, इतना बड़ा ऑडिटोरियम से था और केवल 8 या 9 लोग आए थे, लेकिन भक्त लोग बिल्कुल चुप हो गए। अरे प्रभुपाद के लिए हमने इतना बड़ा हॉल अरेंज किया, सुनने के लिए कोई नहीं आया, 8 या 9 लोग आए, तो भक्त बहुत दुखी थे। तो भक्तों को लगा कि प्रभुपाद से थोड़ा सा क्षमा याचना करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, आपने देखा नहीं, नारद मुनि वहां बैठे हुए सुन रहे थे, ब्रह्मा थे, सारे देवतागण आए हुए थे। तो इस प्रकार से जहां कृष्ण कथा होती है, कृष्ण का गुणगान बिना किसी भौतिक आकांक्षा से होता है, वहां देवता का नाम स्वयं भगवान भी आकर श्रवण करते हैं। इसलिए एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रवचन दे रहे थे सुबह सुबह अपने मंदिर में, तो उनका एक शिष्य बैठने के लिए चटाई डाल रहा था। चटाई मीन्स क्या कहते दूसरा, ये जो है कारपेट, बड़ा सा कारपेट। पहले तो वो छोटा डाल रहा था, बहुत छोटा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, अरे ये तो छोटा सा क्यों डाल रहे हो? कहते आज लोग आने वाले नहीं है, बहुत कम लोग आने वाले, इसलिए छोटा डालते। नहीं, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, जब कृष्ण का गुणगान होता है तो वहां जगह कम पड़ जाती है हॉल में, सारे ऋषि मुनि देवतागण आकर सुनते हैं। तो आप चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तो गौर लीला को सुनने के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग जीवात्माएं आते हैं सुनने के लिए। जैसे जिन्होंने परिक्रमा की होगी तो वहां मध्य द्वीप है, नवद्वीप में कितने द्वीप है? 9 द्वीप है। तो एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप के बाद मध्य द्वीप आता है, मध्य द्वीप में एक स्थान है जहां भक्त लोग विजिट करते हैं जिसको कहते हैं हंस महल। तो हंस महल वो स्थान है, उसको नैमिषारण्य भी कहते हैं नवद्वीप का, जहां सूत गोस्वामी एक बार चैतन्य लीला गौर कथामृत का वर्णन करने वाले थे और सब जगह न्यूज फैली कि गौर कथामृत का वर्णन सूत गोस्वामी करने जा रहे हैं। तो सब जगह से लोग आ रहे थे, तो तो सबसे बेस्ट कृष्ण कथा में रुचि लेने वाले डिवोटी हैं, कौन है वो? वैष्णवाना यथा शंभु, शिवजी और उनकी पत्नी कौन? पार्वती देवी। इनका रुचि जितना कृष्ण कथा में है आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा गया, इतना रुचि इन दोनों को है। तो जब शिवजी को पता चला कि नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन होने जा रहा है, तो उन्होंने सोचा क्लास शुरू होने से पहले पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा तो जो व्हीकल है, मेरा जो कार है वो नंदी बैल है, नंदी बैल को लेकर जाऊंगा तो प्रसादन तक पहुंचेगा, है ना, फॉलोड बाय कृष्ण प्रसाद। मुझे कब पहुंचना है? क्लास से पहले, जब राधा माधव होता है उस समय पहुंचना है। तो शिवजी को लगा एक बैल को लेकर जाऊंगा बैठकर तो चलेगा नहीं, तो उन्होंने देखा कि उनके जो पिता है ब्रह्मा, कौन है उनके पिता? ब्रह्मा जी का जो कार पार्किंग में उनका कार खड़ा था, हंस वाहन खड़ा था, तो उसको ले लिया, उसके ऊपर बैठकर इतने रफ्तार से आ गए शिवजी कि सबसे पहले पहुंच गए वहां। और सुत गोस्वामी के द्वारा वर्णित गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुनने लगे, और देखा गया कि फिर जाते समय वो भूल गए अपना व्हीकल लेकर। आज भी आप जाते हो तो वहां उनका वो गाड़ी आपको दिखाई देता है, हंस वाहन। किसका दर्शन करते आप? हंस वाहन का, आज भी है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य ये कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु या कृष्ण कथा चाहे कोई हो या ना हो, हमें अपने जीवा से उसका उच्चारण करना चाहिए। सर्वाधिक लाभ कृष्ण कथा का वर्णन करने से वक्ता को होता है, और दूसरा लाभ किसे होता है? जो व्यक्ति जिज्ञासा और उत्साह के साथ सुनता है। और तीसरा है जो अटेंडेंस लगाने के लिए आता है कि चलो भागवत कथा हो रही है, गौर कथा हो रही है, मुख दिखा के आते हैं। कई बार होता है ना हमारे एटीट्यूड, मैं अपना मुख दिखा के आ जाता हूं पीछे से, हाँ, तो उनको प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, इसलिए महाप्रभु कहते हैं बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब तरह पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसा मुंह दिखाने वाला कथा कितना भी अटेंड किया तो भी किसी का शुद्धि नहीं होने वाला है। इसी कारण से आचार्यगण हमें प्रेरित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये चरित्र सुनने के लिए हमें सदैव उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। अंत गौरह जीव गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु क्या है? अंत गौरह, अंत कृष्ण बहिर गौरह, अंदर में वो कृष्ण है और बाहर क्या है? गौरांग देव है, गौरांग महाप्रभु है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब अपने शिष्य बिहारी के साथ ट्रैवल करते थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की आयु लगभग 120 साल से अधिक थी, लेकिन एक बार उनका शिष्य कहते थोड़ा सा गुरुदेव हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनाइए। उन्होंने कहा बिहारी कृष्ण कथा नहीं, तुम्हें जिस राजा के राज्य में निवास करते हो उसी राजा का गुण गाना चाहिए। तो इनको समझ में नहीं आया बिहारी को, उनके शिष्य को, जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कृष्ण तो द्वापर युग के थे। कब के थे? द्वापर युग में। और अभी का जो राजा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कौन है? तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु कलयुग के किंग है और उनका ये राज्य है, तो इस युगा में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान गाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का प्रशंसा करना चाहिए और उनके बारे में सुनना चाहिए। तो बिहारी उनका जो शिष्य था गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते बिहारी जरा चैतन्य चरितामृत पढ़ के मुझे सुनाओ। तो बिहारी तो अनपढ़ डिवोटी था लेकिन सेवा में प्रवीण था। किसमें प्रवीण था? प्रसाद पाने में नहीं, किसमें? सेवा में। तो सेवा में इतना प्रवीण था कि बाबा जी महाराज को उठाकर टोकरी में लेकर कई मैल वो चला करता था। तो ऐसे बिहारी को कहा कि अभी मुझे महाप्रभु का लीलाओं को सुनना है, चैतन्य चरितामृत को जरा सुनाओ। बिहारी कहते, गुरुदेव मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, ये सारे अक्षर एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। तो कहते उठाओ बुक, बुक क्या करो उठाओ। तो बिहारी ने जैसे चैतन्य चरितामृत उठाया और आके अपना दृष्टि डाले तो ऐसे पढ़ने लगा जैसे कोई महान विद्वान चैतन्य चरितामृत का रिसाइटेशन कर रहा है। तो ये उनके आदेशों का पालन करने का गुण है। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण हमारे लिए बहुत दूर है, हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। आज मैं प्रभु जी से बात कर रहा था रूम में कुछ समय पहले, तो वो देख रहे थे कि मथुरा में भी एक कृष्ण है, द्वारका में भी है, फिर वो विष्णु भी है, नारायण भी है, इतने सारे विस्तार है। तो मैंने कहा ये हमारे बस का नहीं है कलयुग के जीवों के लिए। हाँ, तो महाप्रभु तो वृंदावन के जो कृष्ण है उनका जो उन्नत उज्जवल रस के माध्यम से जो भगवत भक्ति है वो देने के लिए आए हैं। कलयुग के जीवों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, इसी में बहुत जीवन हमारे चले जाते हैं। तो कहां वो वृंदावन के कृष्ण, फिर मथुरा के कृष्ण, फिर वो द्वारका के कृष्ण, और फिर उनके इतने सारे विस्तार आदि। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं सरल ही कलयुग में अवतरित होता हूं, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसलिए गौर गोविंद महाराज कहा करते थे, कृष्णा टेढ़े है, टेढ़े मीन्स कपटता है। गोपियां हमेशा कृष्ण को क्या कहती है, ये बहुत कपटी पर्सन है, हमें धोखा देकर कहां चले गए मथुरा, और हमें जस्ट कहा कि हम वापस आएंगे और कभी ब्रज में वापस आए नहीं। तो इस प्रकार से गोपियां तो बहुत उनको ये देती हैं, कठोर वचन बोलती हैं। तो लेकिन ऐसे कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो बहुत सरल होते हैं, और ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम लोग सरलता से समझ सकते हैं। इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कोई भी नया भक्त मंदिर ज्वाइन करता था तो उसको सबसे पहले एक बुक पढ़ने के लिए देते थे, और वो कौन सा था, चैतन्य भागवत, महाप्रभु की सरलतम लीलाएं, जिनको सुनने मात्र से हृदय पिघल जाएगा। और स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी सरलता से समझ सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि हर एक व्यक्ति को चैतन्य भागवत, जो चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्र से भरा है, 108 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार, 108 माला, 108 माला नहीं, 108 मनके पे जप करना इतना कठिन है। उसमें ये चैतन्य भागवत, इतनी बड़ी बड़ी तीन किताबें हैं, इंग्लिश में तो 7 है, इनको कौन पढ़ेगा 108 बार। क्यों, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए अपने शिष्यों को क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र हमें जीवन की जो परम सिद्धि है वो प्रदान कर सकता है। ऐसे नहीं कि आजकल के भक्तों को सुनना चाहिए, बल्कि ये जो गोस्वामी थे उनका हर रोज का अपना शेड्यूल था, और उसमें वो अपना एक समय निश्चित करते थे 1 या 2 घंटे, और जाकर ये गोस्वामीगण चैतन्य कथा सुने करें, चैतन्य लीला का। ये जो राधा दामोदर मंदिर है वहां जाकर ये गोस्वामीगण एक तो रघुनाथ भट्ट से श्रीमद् भागवतम सुना करते थे, और बाकी आपस में अलग अलग डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु का जो लीला चरित्र है उसको सुनते थे और उसकी व्याख्या करते थे। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, बहु सिंधु तरी बारे आछे जान चित्त, श्रद्धा करे सुन से चैतन्य चरित। वो कहते कि इस भौतिक सागर को जो पार करना चाहिए चाहता है उस व्यक्ति को श्रद्धा के साथ चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनना वैसे भी हमारे लिए बहुत तम हमारा सौभाग्य है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते गौरांगेरा मधुर लीला जार करणे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलतार। जो गौरांग महाप्रभु की लीलाएं हैं, जो व्यक्ति के जब उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जब कृष्णदास कविराज ने ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत, तो बहुत भक्तों ने अपना फीडबैक दिया कि बहुत कठिन है समझना। तो फिर उसके अंदर एक श्लोक उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि कई भक्तों को लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को समझना बहुत कठिन है, या फिर समझ में नहीं आता ठीक से। तो एक उपाय कृष्णदास कविराज बोलते हैं, वो कहते हैं जय बधाई बुझे के सुनिते सुनिते शह कि अद्भुत चैतन्य चरित। वो कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक उपाय है, इसको निरंतर क्या करो, सुनते रहो। सुनते रहने से ये चैतन्य महाप्रभु का चरित्र हमारे लिए एक कमल की भांति जो बहुत सुंदर है वैसे समझ में आने लगती है चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है। और महाप्रभु के बारे में सुनने से क्या होता है, कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण उपजीवे प्रीति जाने में रसेर रीति। दो चीजें आपके जीवन में आ जाएगी, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक हमारा आकर्षण बढ़ने लगेगा, और दूसरी चीज क्या है, जाने में रसेर रीति। ये जो सिद्धांत है शास्त्रों के, अर्जुन रूप गोस्वामी ने भगवत भक्ति की व्याख्या की है रसों की, वो सारी चीजें हमारे लिए सरलता से समझ में आने लगेगी। इसी कारण से बारंबार चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब चैतन्य भागवत की टीका लिखते हैं तो वो कहते हैं कृष्ण अनुराग हाय विषय आसक्ति क्षाय, कहते कि ये कथा सुनने से कृष्ण में अनुराग होगा और विषयों की आसक्ति खत्म हो जाएगी। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लव्य है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने से एक व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए नहीं है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो ये चैतन्य महाप्रभु का चरित्र या शिक्षा है कालांतर से लुप्त हो सकती है। कितने लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, हम अपने अर्ली डेज में महाप्रभु चैतन्य का नाम भी नहीं सुने थे, इसको अंगे आने के बाद सुनते हैं लेकिन हम आगे जानने का प्रयास नहीं करते। जब गौर पूर्णिमा आते हैं तब हम थोड़ा सा नाचते हैं कूदते हैं, फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा नाचना कूदना और हरी हरी बोल करना है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये हरी बोल ज्यादा दिन नहीं चलेगा जब गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को यदि समझते नहीं हो। इसी कारण से नरोत्तम दास ठाकुर एक बार चैतन्य चरितामृत के बारे में जब सोच रहे थे तो नरोत्तम दास ठाकुर रो पड़े। उन्होंने कहा मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे इतना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिला था, कृष्णदास कविराज ने ये चैतन्य चरितामृत लिखा है। अब वो प्रार्थना में एक सॉन्ग में लिखते हैं कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज जय रचिला चैतन्य चरित। वो कैसे ऐसे मेरे डिवोटी हैं कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। गौर गोविंद लीला सुनिते गलाय शिला ताहे ना डूबिला मोरा चिंता। वो कहते हैं कि उन्होंने गौरांग महाप्रभु और गोविंद देव की लीलाओं का वर्णन किया। उनके दो बुक बहुत फेमस है कृष्णदास कविराज के, एक है श्री चैतन्य चरितामृत और दूसरा है श्री गोविंद लीलामृत। तो ये ऐसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, कहते हैं कि इनको सुनने मात्र से अब पत्थर भी पिघल जाते हैं, या फिर पत्थर जैसे हृदय वाले व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता है, लेकिन मेरी ऐसी दशा है ताहे ना डूबिला मोरा चित्त, मेरा जो चित्त है मन है उसमें डूबा नहीं है। तो भक्ति की सर्वोच्च सीमा क्या है कि एक भक्त पूर्ण रूपेण ये जो गौर लीलामृत है या कृष्ण कथामृत है उसमें उसका चित्त डूब जाना चाहिए और वही वास्तव में हमारे जीवन का परफेक्शन है। इसलिए है कि नरोत्तम दास ठाकुर जब छोटे बालक थे तो वे स्कूल से आते थे दौड़कर और अपना बैग एक और फेंकते हैं। उनके गांव में एक ब्राह्मण थे कृष्णदास, उनके पास जाकर चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को निरंतर वो सुना करते थे। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र आप पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो वो दो बुक्स अपने साथ लेके गए थे। एक तो उन्होंने ट्रंक में पैक करके भागवतम भेजा था, लेकिन अपने साथ एक बुक रखा था, वो कौन सा था? चैतन्य चरितामृत। जो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मैं बहुत कष्ट में था, शारीरिक वेदनाएं थी मेरे जर्नी के दौरान उस जलदूत जहाज पर, तो मुझे थोड़ा सा आनंद या थोड़ा मेरा दुख कम हो जाता था, वो किससे? चैतन्य चरितामृत को मैं रिसाइट करता था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का गुणगान करते हैं। इसी कारण से प्रभुपाद ने इतना जोर दिया एक एक प्रकार से कि श्रीमद् भागवतम का अनुवाद प्रभुपाद कर रहे थे तो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद प्रभुपाद ने बीच में रोका और उन्होंने नया अनुवाद शुरू किया, एक नया बुक शुरू किया, चैतन्य चरितामृत। पहले चैतन्य चरितामृत को खत्म किया और फिर भागवतम का अनुवाद प्रभुपाद ने कंटिन्यूअसली किया। तो प्रभुपाद ये भी चाहते थे कि चैतन्य चरितामृत के जो सिद्धांत है, शिक्षा है, यदि भगवत भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक है तो एक व्यक्ति को समझना परम आवश्यक है। इसलिए ये चैतन्य चरित्र का वर्णन करना या चैतन्य चरित्र को सुनना ये बहुत सौभाग्य की बात है और इसी कारण से हमारे संप्रदाय का ये विशेष उपहार है कि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इसमें क्या है? एक अधिक है। इसलिए चैतन्य चरित अमृत, इसको अमृत शब्द कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कैसा है? अमृत के समान है। तो जो वास्तव में अमर रहना चाहता है, अमृत को चखना चाहता है, उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य महाप्रभु की तो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन मैं इस 3 दिन के लिए सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से दीक्षा ग्रहण करते हैं ईश्वरपुरी से और दीक्षा के बाद उनकी जो लीलाएं हैं संन्यास लेने तक। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि 3 दिनों में हम ट्राई करते हैं कि उनका ये जो जर्नी है और ये सारी लीलाएं नवद्वीप की है, तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी सारी लीलाएं हम कवर कर पाएंगे क्योंकि बहुत विस्तार है। एक के बाद एक कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं है ये समंदर के तरंगों के समान है, लहरों के समान है, वेव्स ऐसे आती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को यदि मौका मिले ये चैतन्य चरित्र का थोड़ा सा बिंदु चखने का, तो उससे जैसा ग्लोरियस व्यक्ति संसार में नहीं है, उसके जैसा सौभाग्यवान व्यक्ति संसार में नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को थोड़ा सा भी क्या कर पाए, छक पाए। कहते कि इतना अद्भुत है कि चैतन्य चरित्र के द्वारा सारा एक बिंदु इस पूरे जगत को डुबाने में समर्थ है। तो हम तो सागर का पार नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का ये जो अद्भुत चरित्र है, इन आचार्यों के द्वारा जो प्रस्तुत है, उसको सुनने का या उसको समझने का। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजेलिस में अपने डिवोटीज को पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो भक्तगण क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्ण के अवतार नहीं है। दूसरे आदमी सोचा इतना क्लोज आंसर मैंने दिया है और तो क्या आंसर हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो इसी कारण से जनरली जब हम नए आते हैं तो राधा कृष्ण ठीक लगते हैं, लेकिन ये दो हाथ खड़े करके कौन है। मैं अभी कोलकाता से नवद्वीप से हावड़ा आ रहा था ट्रेन से, तो एक व्यक्ति मुझे अपने साइड में बैठे हुए मिला। वो कहां से आ गया था, पहली बार मायापुर आया था, अपनी ट्रेनिंग के लिए आया था कोलकाता, और उसको किसने का कुछ देखने की इच्छा है तो बंगाल में मायापुर बहुत अच्छा जगह है देखने के लिए, वहां जाओ। तो एक दिन रात्रि सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो सैटरडे नाइट आ गया था, सैटरडे नाइट रहा, वो मंगल आरती आया, लोगों ने कहा 4 बजे बहुत अच्छा होता है वहां, तो आया। और फिर दोपहर को जब जा रहा था तो मैं पहले ट्रेन में बैठा था, तो वो व्यक्ति कहता है मुझे तो बाकी चीजें बहुत अच्छी लगी, वो अष्ट सखिया और राधा माधव, लेकिन जो जो 4-5 लोग है ना ऐसे खड़े थे, कहते जो बीच में एक था वो ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके था, फिर जो दो थे ऐसे थे, ऐसी मुद्रा में थे, एक था ऐसे था, ये कुछ समझ में नहीं आया ये कौन से भगवान है। तो मैं आधा घंटा 2 घंटे का जर्नी था, तो 1.5 घंटा उसके साथ बिता रहा था, चैतन्य महाप्रभु कौन है, फिर ये सारे पंच तत्व कौन है। तो हमें भी जब नए नए आते हैं तो हमारा फेथ नहीं होता, नाचना कूदना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके बारे में सोचना समझना जानना इतना ठीक नहीं लगता। लेकिन जब जितना हम भगवान के बारे में जानते हैं उतना अधिक हम उनसे प्रेम करने लगते हैं, उतना अधिक भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैंने ग्रंथ लिखे हैं ताकि कृष्ण को हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक जान सकते हैं। कृष्ण तो अथाह है, इवन अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत सालों से कृष्ण का गुणगान करने में सक्षम नहीं है, वो हर गए हैं। लेकिन तो हमारे जैसा क्षुद्र जीव क्या समझ सकता है कृष्ण को, बल्कि हमें एक ही चीज समझनी है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कभी कभी दास या कभी कभी दासी नहीं, कब नित्य, फेस्टिवल आता है तो दास और दासी, बाकी समय में प्रभु। तो ऐसे नहीं, तो एक ही चीज हमें इतना सारा श्रवण कीर्तन यात्रा या फिर अध्ययन इन सबके द्वारा एक ही चीज अनुभव करनी है कि हे कृष्णा आप प्रभु हो और मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। इसी भावना को चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, अये नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवा बुधो कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंतया। कि हे नंद तनुज कृष्णा अब मैं तो इस भव सागर में गिरा पड़ा हूं, आप प्लीज कृपा करके मुझे उठाइए और आपके चरण कमलों में एक धूलि का कण बना लीजिए। लेकिन हम धूलि का कण नहीं बनना चाहते, हम बिग डिवोटी बनना चाहते हैं, वेल रिस्पेक्टेड और ना कितनी सारी आशाएं हैं, जय प्रसाद है पूरे सर्व आशा, इतनी सारी आशाएं लेकर आए हम, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसाद चाहिए, प्रसाद मीन्स कृपा। तो एक ही आशा रखे हम कि कृष्णा आप मुझे आपके चरण कमलों में एक छोटा सा स्थान प्रदान कीजिए धूलि का, उसका मतलब है गोपीर भरतुर पद कमल योर दास दासानुदास। धूलि का कण में सारे क्या अस्तित्व रह गया मेरा, धूलि का कण उसका मतलब है कि भक्तों के भक्तों का भक्त या सेवकों के सेवकों का सेवक, ये भावना हमें होनी चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम शुरुआत में बहुत कठिन होता है डाइजेस्ट करना, चैतन्य महाप्रभु की जो फिलोसफी है, और विशेष रूप से चलो महाप्रभु ठीक है, फिर वो आद्वैत आचार्य भी है, उनको समझ में नहीं आता, फिर वो गदाधर पंडित है वो, और फिर वो श्रीवास ठाकुर है, और उसके अलावा इतने सारे भक्त है, फिर कहते वृंदावन बहुत सर्वश्रेष्ठ, फिर मायापुर था मुझे मैं हमेशा कभी मुझे फोन करते पेरेंट्स या कुछ रिलेटिव्स वगैरह, तो मैं कहता हूँ मैं मायापुर में हूँ, गलती से हमेशा मायापुर में होता, तो वो कहते ये मायापुर क्या माया का नाम है क्या, उनको लगता है मायापुर मीन्स जहां माया बहुत है। तो ये मायापुर धाम भी हमें सरलता से डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी जो ग्लोरीज है, महिमा है, वो भी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन हृदय में उसके प्रति फेथ, विश्वास नहीं है। ज्यादा विश्वास कहा है हमें वृंदावन, लेकिन नवदीप मायापुर के प्रति नहीं। तो जब हम भगवान को सही ढंग से समझते हैं, चैतन्य महाप्रभु एज कृष्णा, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, गदाधर पंडित साक्षात श्रीमती राधिका है, और श्रीवास ठाकुर भक्त नारद है। तो जब ये हम सिद्धांत शास्त्रों के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं, तो हम हमारी श्रद्धा और फिर बढ़ता है, और फिर नेचुरली भगवान के प्रति, फिर उनसे संबंधित जो भी चीज है उसके प्रति भी हमारा फेथ बढ़ता है, और प्रशंसा का भाव भी बढ़ता है उनके धाम के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, उनका जो गुणगान है उसके प्रति। इसी कारण से बहुत आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु आदि और उनके जो भक्त हैं या उनका चरित्र है, उनकी लीला कथा है, उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से हम सुनते रहे, किसी ना किसी प्रकार से चर्चा करते रहे। तो क्या होगा कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हमारा जो अनुराग है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, 5000 साल पूर्व जब भगवान इस जगत से अप्रकट हो जाते हैं कृष्णा, तो अप्रकट होने के बाद जब 5000 साल लगभग बीतते हैं, तो भगवान सोचने लगते हैं। आदि लीला में वर्णन आता है, कृष्ण एक बार बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हो गया, मैंने भगवत गीता का इतना अमेजिंग प्रवचन दिया, और गला होता ना, कई बार वक्ता गला फाड़ फाड़ के बोलता है कि श्रोताओं को कुछ समझ में आ जाए। तो उन्होंने सोचा कि मैंने इतना बोला, कुछ बार बार बोला, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो सर्व धर्मान परित। जब सोचो गीता के श्लोक एक हथौड़े के समान है, एक के बाद एक ऐसा भगवान क्या कर रहे हैं, सर में मार रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए, दिमाग ठिकाने में आ जाए। तो भगवान कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान जब ये सब बातें बोलते हैं, 5000 साल बीतते, तो भगवान सोचते, अरे मैं तो सोच रहा था गीता सुनने के बाद हजारों हजारों लोग मेरी शरण ग्रहण करेंगे, लेकिन देखा एक भी भक्त नहीं बन रहा है। इसलिए भगवान ने बलराम को बोलना भी पड़ा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान मानवा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान बहुत कुछ बोले और सोचा कोई भी डिवोटी नहीं बन रहा है, तो भगवान को एक कमी नजर आई। किसकी कमी? दूसरों की नहीं, हमारी समस्या क्या है, जितनी हमें कमी है हम ग्लोरियस है, लेकिन जो कमी है वो किस में है, दूसरों में है। भगवान ने अधिकतर दोष इन जीवों को नहीं दिया, कृष्ण ने सोचा कि मैं इसका कारण हूं, ये लोग मेरी शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा, ये दो प्रमुख ग्रंथ जो मैं देके आया हूं, भगवद गीता और श्रीमद भागवतम। तो भगवान कहते हैं, चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं, कृष्ण कहते हैं, आपने न कैल धर्म शिखा न जाय यही त सिद्धांत गीता भागवते गाय। कि जब तक आप खुद पालन ना करके, पालन नहीं करते, तो उसको सिखाने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैंने इतना सब कुछ बोल दिया गीता और भागवत, लेकिन मैंने ये नहीं सिखाया डायरेक्ट अपने आचरण से कि भक्ति कैसे करनी है। इस कारण से भगवान सोचते हैं कि मुझे अवतरित होना होगा। हाँ, तो फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण सोचते कि कैसे अवतरित हो, तो भगवान सोचते ढूंढता हो, क्योंकि कृष्ण की खासियत क्या है, जो भी रोल उनको अदा करना है वो परफेक्ट होना चाहिए। वो सुअर बने वराह, तो कैसे, परफेक्ट सुअर, कोई मत्स्य अवतार ऐसी मछली बने कि जिसकी कोई तोड़ नहीं है संसार में। जितने भी अवतार भगवान जो भी रूप धारण करते हैं उसमें परफेक्शन होना चाहिए। तो भगवान ने सोचा भक्त बनना है, कौन सा भक्त की नकल करो, तो सोचा कौन सा बेस्ट डिवोटी है, किसका ढूंढा भगवान ने? श्रीमती राधा रानी को। तो भगवान ने सोचा बेस्ट डिवोटी कौन है, कौन से बेस्ट डिवोटी में जिसका बेस्ट हृदय है। बेस्ट डिवोटी मीन्स रूप रंग आदि से बेस्ट नहीं, बेस्ट डिवोटी मीन्स कैसे होना चाहिए, उसका उसका हृदय किस प्रकार से है, उसके आधार पर देखा जाता है कि वो किस प्रकार का डिवोटी। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति इज द हार्ट ऑफ अफेयर ऑफ हार्ट। भक्ति क्या है? ये हृदय का अफेयर है कृष्ण के साथ। तो वैसे ही भगवान ने सोचा कि कौन सा डिवोटी ढूंढो, तो उनको लगा कि सर्वाधिक हृदय मेरे लिए किसका है, तो वो किसका है? श्रीमती राधा रानी का है। भगवान ने सोचा अब वो तो अंतरंग कारण है, वो कभी डिस्कस किए जा सकते हैं। भगवान ने देखा कि ये श्रीमती राधा रानी मुझसे सर्वाधिक प्रेम करती है। क्या ऐसी चीज है जो मुझ में है जो मुझे पता नहीं है? तो भगवान एक बार सारे शास्त्रों को बुलाते हैं, वेद उपनिषद भागवत सारे शास्त्रों को, और बोलते हैं कि मुझ में क्या कमी है बताओ। तो सारे शास्त्र चुप होते, लेकिन भागवत बहुत कड़क है, परफेक्ट है। भागवत कहता है आप में एक कमी है। तो कृष्ण को लगता है मुझ में भी कमी ढूंढ रहे हो। तो भगवान को कहता है भागवत आप में कमी है, ये कमी है कि आपकी सेवा करके भक्तों को जो आनंद मिलता है वो आनंद आप अनुभव नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहते शुगर को स्वीटनेस अनुभव करना है तो खुद अनुभव नहीं कर सकती। जैसे बालक और मदर, माँ और छोटा सा बालक, बालक को यदि सोचना, बालक को यह पता नहीं होता कि मेरी सेवा करके मुझसे प्रेम करके माँ को कितना आनंद मिलता है। बालक को क्या बनना पड़ेगा? माँ बनना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भगवान को यह पता नहीं था कि क्या ऐसी चीज है जो मेरी सेवा करके भक्तों को इतना आनंद मिलता है। ये लीला चैतन्य मंगल में आती है, किस प्रकार से रुक्मिणी कृष्ण को एक द्वारका में बताती है, रोती है और भगवान को बताती है। हाँ, जैसे चरण रुक्मिणी ने अपने हाथ में पकड़े रोने लगी, कृष्ण ने कहा रे रोज ही तो चरण आप मसाज करते हो, जल हमेश करते, आज क्या हो गया? उन्होंने कहा आपकी चरण सेवा करके जो आनंद प्राप्त होता है वो उसका आपको पता नहीं हो सकता, उस आनंद को आप अनुभव नहीं कर सकते। इस कारण से आपको क्या करना होगा? राधा रानी का हृदय स्वीकार करना होगा। इसलिए कृष्ण को कहते हैं सबसे बड़े चोर है शेर आदि काश हृदय चौरम। राधिका का क्या कर दिया कृष्ण ने? हृदय को चुरा लिया और चुरा कर अपने जगह डाला और वो भक्त के रूप में श्रीमती राधा रानी के हृदय भी और उनकी जो अंग कांति है उन दोनों को भगवान ने धारण किया और इस जगत में अवतरित हुए। तो ऐसे कई सारे कारण चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में हमें पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन प्रमुख यही है कि सारे जीवों का कल्याण करने हेतु और भक्ति का आस्वादन, भक्ति रस आस्वादन है। भक्ति रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं 500 साल पूर्व नवद्वीप मायापुर में। तो भगवान अवतरित होते हैं और भी कई प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं, और भगवान का अवतरित होने का यह भी एक उद्देश्य है कि सारे जीवों को कृष्ण नाम संकीर्तन देना, हरे कृष्णा तो सारे भक्तों को या सारे जीवों को कृष्ण नाम संकीर्तन प्रदान करना, यह भी एक उनका उद्देश्य था। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो उसी समय से ये कृष्ण नाम संकीर्तन शुरू होता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के बचपन के कई सारे नाम थे। एक नाम था उनका नीम वृक्ष के नीचे जन्म होने के कारण उनको निमाए, ये सीता ठाकुरानी अद्वैत आचार्य की पत्नी ने यह नाम दिया था। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु निमाए का जन्म हुआ तो दौड़ते हुए एक नवदीप वासी श्री जगन्नाथ मिश्र के पास जाती है और कहते कि आपके घर में उदय हय चे शशि, मतलब आपके घर में चंद्रमा उदित हो गया है। जगन्नाथ मिश्र ने कहा रहे तो दौड़ते हुए आते और देखते हैं अरे सुवर्ण वर्ण का बालक है। तो जगन्नाथ मिश्र उनका नाम रखते हैं, क्या नाम रखा? गौरंगा। जोर से धीमे बोल रहे हैं, जोर से। तो जगन्नाथ मिश्र ये गौरंगा नाम रखते हैं। फिर नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के फादर, तो वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो जब जैसे ही देखते हैं इस बालक को तो एक नया नाम रखते हैं विश्वंबर। क्या नाम रखा? तो चैतन्य महाप्रभु का ऑफिशियल नाम विश्वंबर था, बाकी सारे उनके निकनेम थे। जैसे नित्यानंद प्रभु का नित्यानंद स्वरूप है उनका नाम। तो जब इनका विश्वंबर नाम रखा तो उन्होंने कहा विश्वंबर का मतलब है कि ये बालक वास्तव में सारे विश्व का पालन पोषण करने में समर्थ है। तो ऐसे निमाय छोटे से बालक बड़े होते हो जाते हैं और बहुत बड़े स्कॉलर बनते हैं, स्कॉलर होते हैं। और उनका मन केवल शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों मतलब स्टडीज करना, न्याय शास्त्र, व्याकरण, संस्कृत आदि, और उसी में मग्न रहना। वो भगवत भक्ति का उन्होंने कभी भी अपनी बाल्य लीला में अधिकतर कभी प्रकाश नहीं किया कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम की भावना को। लेकिन एक ऐसा समय आया जहां से हम हमारी कथाएं शुरू करने जा रहे हैं कि महाप्रभु क्या करते हैं, अपना जो भगवान के प्रति प्रेम भाव है वो सर्वप्रथम प्रकट करते हैं। वहां से हम शुरू करेंगे। उससे पहले तो ये सब बहुत सारी बाल लीलाएं हैं जिनको आपने सुना होगा या फ्यूचर में सुन सकते हैं। तो ऐसे निमाय पंडित अपने शुरुआत के जीवन में केवल पंडित ही थे, भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन अवतरित हुए थे कि मुझे बेस्ट भक्त बनना है, लेकिन जानबूझ के वो ऐसा कर रहे थे, इस प्रकार की लीलाओं का संपादन कर रहे थे। तो एक बार ऐसे निमाय पंडित ने सोचा, उनके जो पिता है जगन्नाथ मिश्र का देहांत हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी माता सची माता को कहा कि मुझे यात्रा में जाना है। कहाँ जाना है? जैसे हम कई दिन पक जाते ना एक जगह में, हम सोचते थोड़ा सा दौड़ के आता हूं, थोड़ा सा यात्रा ही करके आता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु पहले तो बांग्लादेश की यात्रा में गए थे, बंगाल, पूर्व बंगाल, जब उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी थी। फिर उसके बाद आते कि नहीं आते, लक्ष्मी देवी तो जगत से चले गए थे, उनका विवाह हुआ था विष्णुप्रिया से। विष्णुप्रिया से विवाह होने के तुरंत बाद वो कहते हैं कि ओ माता सची, मैं गया यात्रा करना चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं? गया जाना चाहता हूं। तो गया जाना चाहता हूं ताकि मैं पिंड दान कर सकूं। तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भगवान जो भी कार्य करते हैं उसमें दो चीजें हमेशा होती हैं, एक उसके पीछे कुछ बाहरी कारण होता है और कुछ अंतरंग कारण होता है, हर एक्टिविटीज, हर लीला के पीछे। तो चैतन्य महाप्रभु का जैसे दक्षिण भारत जाना था, उनको दक्षिण भारत की यात्रा में, तो चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए कहा कि मैं, मेरे बड़े भाई विश्वरूप ने संन्यास लिया है, उनको मिलने के लिए मैं ढूंढने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता हूं। लेकिन ये सबको बाहरी रूप से बताने के लिए था, लेकिन अंतरंग रूप से क्या था उनका? एक डिवोटी को मिलना चाहते थे वो, और वो कौन थे? रामानंद राय। इसलिए जब वो वापस आए दक्षिण भारत की यात्रा से, सर्व भट्टाचार्य ने पूछा कैसे रहा आपका यात्रा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक रामानंद राय बहु सुख दिला, भट्ट कहे यही लागी मिली ते कहिला। तो सर्व भट्टाचार्य ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने सर्व भट्टाचार्य को कहा रामानंद राय ने मुझे अत्यधिक आनंद प्रदान किया, उनका एसोसिएशन, उनसे मैंने बहुत गोदावरी के तट पर कृष्ण भक्ति के जो सर्वोच्च पूर्ण सिद्धांत है उसकी व्याख्या सुनी, हाँ, तो ये सब चीजें उन्होंने जब कहे, ये वास्तव में उनका अंतरंग कारण था। फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से जगन्नाथपुरी को छोड़कर कहते मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है तो मेन हाईवे पकड़ के जाओ। वो कहते मुझे बंगाल से होते हुए जाना है, कुछ कारण नहीं था, ये तो सब एक प्रकार से ड्रामा है। तो भगवान चैतन्य कहते मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन मैं जाऊंगा तो बंगाल से। तो एक डिवोटी ने पूछा, क्यों बंगाल से जाना चाहते हो? वहां मेरे दो हितेशी हैं, दो मदर्स है, मेरे दो माँ है। दूसरा डिवोटी पूछता है, कौन है आपकी दो माता है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक सची माता और एक है गंगा देवी, गंगा माता है। तो गंगा में स्नान आदि करना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से होते हुए सोचते जगन्नाथ वृंदावन जाना है, लेकिन जाते जाते एक गांव में गए, वहां जाकर वो किसको मिलना चाह रहे थे? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी राम अकेले में। और जैसे मिले तो कहते अभी वृंदावन नहीं जाएंगे, वापस जगन्नाथपुरी चलो। फिर तीसरी बार जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा चैतन्य महाप्रभु के जो भी कार्य है उसके पीछे अंतरंग और बहिरंग कारण है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने या विश्वंभर या निमाई ने सोचा, सची माता को कहा कि मैं कहा जाना चाहता हूं, गया की यात्रा करना चाहता हूं। हाँ, बाहरी रूप से सबको बोल दिया कि मैं पिंडदान करने जा रहा हूं, लेकिन आंतरिक रूप से क्या था? वहां किसको मिलना था? उन्हें ईश्वरपुरी से मिलना था बस, और उनका कोई उद्देश्य नहीं था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब गया यात्रा के लिए निकले नवद्वीप से, तो उस समय वो एक पंडित थे, एक टीचर भी थे, और उन्होंने अपना एक स्कूल भी शुरू किया था, चतुष्पाष्टी कहते हैं उसको। और वो एक टीचर के अंडर स्टूडेंट भी थे, जिनका नाम था, उनके टीचर थे गंगादास, जिनके अंडर खुद सीखते थे। लेकिन इतने प्रभावी छात्र थे कि अभी टीचर ने कहा, बेटा तुम अभी सिखाना शुरू करो, अभी मैं बहुत सिखाया मैंने। तो ये इतना अपने अंडर स्टूडेंट्स को रख के डिसिपल्स बनाकर सिखाने लगे। तो ऐसे निमाई पंडित एक दिन गया के लिए निकले, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लिया। तो जब गया जा रहे थे तो ये स्टूडेंट्स कोई सीरियस नहीं थे, ये हमेशा मजाक मस्ती करने वाले थे, और विशेष रूप से ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने वाले। किसका? ब्राह्मणों का। जैसे ये हरे कृष्णा वाले कहां घूमते हैं तो कोई चोटी खींचता है, तो कुछ कमेंट करता है, तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो वैसे ही ये जब निमाई निकले थे गया की यात्रा में, इन्होंने देखा कि मैं तो जा रहा हूं और इतने कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ जा रहे हैं कि ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हैं, ये उचित नहीं है। इनको सीखना होगा कि ब्राह्मण मेरा हृदय है, डिवोटीज मेरे हृदय है। तो भगवान क्या करते, रास्ते में कहते मुझे बुखार हो रहा है, इतना बुखार होने लगा उनको। जब वो बंदराचल बिहार में पहुंचे, बंदराचल पर्वत है जहां मधुसूदन विग्रह है, उनका दर्शन किया और उन्होंने कहा मुझे अभी बहुत बुखार हो रहा है, और मूर्छित हो रहे थे बुखार के कारण। तो सारे स्टूडेंट चिंतित हो गए, उन्होंने कई सारे मेडिसिन दी, जैसे आजकल आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कितने सारी चीजें पीछे लगी है। तो मेडिसिन दी तो कोई काम नहीं कर रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु को पूछा, बताइए आपकी बीमारी का मेडिसिन आपको ही पता होगा। तो निमाय पंडित कहते हैं, हाँ मेरी दवाई है ब्राह्मणों के चरणों का जो पादोदक है, जल है, चरणों को धुला हुआ जल, उसको मैं पान करूंगा, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट भागे ब्राह्मणों को उस बहाने, उस सारे स्टूडेंट ने किसकी चरण सेवा की? ब्राह्मणों की। जल लाया, धोए चरण कई सारे ब्राह्मणों के, प्रणाम किया, और लाकर वो धुला हुआ जल किसको दिया? हिमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु को। और जैसे पिया तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसी यात्रा करते करते जब वो गया में पहुंचे, गया के पास, तो वहां एक रिवर है, पुनपना रिवर। तो वहां जैसे गए तो वहां उन्होंने स्नान किया, पिंडदान आदि करके वो हाथ जोड़कर गया में प्रवेश कर रहे थे। हाथ जोड़कर इसलिए प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने उनको जानते थे कि गया कोई सर्वसाधारण स्थान नहीं है, यहां साक्षात भगवान विष्णु के क्या है, चरण कमल है, जो चक्र बेड है, राउंड प्लेस है, जहां भगवान ने अपने एक चरण रखे हैं, जिस कारण से उसे एक पदी भी कहते हैं। तो आपने दोनों हाथों को जोड़कर विनम्रता का भाव अपने हृदय में धारण करके प्रवेश किया। जैसे आक्रूर भी वृंदावन में प्रवेश किए थे सीना तान के नहीं, कैसे जैसे ही उनका रथ वृंदावन के सीमा में गया तो आक्रूर रथ से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि ये अद्भुत भूमि है ब्रज, जहां भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों से सुशोभित है, और वो उतरे और उन चरणों को प्रणाम करने लगे, रोने लगे और कृष्ण और बलराम का गुणगान करने लगे। ये वास्तव में वृंदावन में प्रवेश है, अन्यथा हम काल या कई चिन्हों से धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। हृदय और हमारे एटीट्यूड से हम क्या कर सकते हैं, किसी धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब अपने हाथ जोड़कर गए अंदर, तो वहां फिर से उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया और जो विष्णु टेम्पल है उसकी ओर चलने लगे, जहां भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। जैसे वो चल रहे थे तो देखा कि हजारों हजारों ब्राह्मण वहां खड़े हैं और कई सारे मालाएं, अगरो, चंदन, क्लोथ्स, वो सब दान कर रहे हैं लोग और वहां डाल रहे हैं। और जैसे ये नजदीक गए और नजदीक जाते हैं, उन्होंने भगवान के चरण कमलों को देखते ही चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करते ही उन्होंने जितने भी ब्राह्मण थे भगवान के चरण कमलों की स्तुति को बोल रहे थे। वो कह रहे थे, काशीनाथ हृदय धरेला जय चरण, जय चरण निरवधि लक्ष्मी रसेवान। वो कहते ब्राह्मण सब बोलने लगे कि देखो देखो ये चरणों को देखो, यही चरण है जो काशीनाथ, काशीनाथ कौन है, शिवजी। ये शिवजी इतने बड़े हैं, हजारों लोग उनकी उपासना आदि करते हैं, लेकिन वही शिव हमेशा अपने हृदय में ये कृष्ण के चरणों को धारण करते हैं, यही वो चरण है लक्ष्मी देवी उनकी पूजा आदि करती है, यही वो चरण है जिनको बलि ने क्या किया था, अपने सर में रखा था। तो वो ब्राह्मण कहने लगे, हे भाग्यवान व्यक्ति, इन चरणों को सदैव देखो। और वो कहने लगे कि यदि कोई व्यक्ति थोड़े क्षण के लिए भी भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है तो वो यम के घर जाने का पात्र नहीं रहता। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, थर्ड कैंटो में वर्णन आता है भागवतम में कि कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से मन में सुमेरु जैसे बड़े बड़े पाप के पहाड़ है वो भी क्या हो जाते हैं, विध्वंस हो जाते हैं, इतने शक्तिशाली है। इसलिए सेकंड कैंटो में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों का स्थान कहा है, सारंगानाम पदांगुजम, सारंगम इज डिवोटी, जो कृष्ण के अलावा किसी चीज में रुचि नहीं रखता। तो वो कहते हैं कि भगवान के भक्तों का जो स्थान है भगवान के चरण कमल है। तो इस प्रकार से चरणों की महिमा का जब वर्णन सुना और उन ब्राह्मणों ने कहा यही चरण है जिससे गंगा उद्भूत हुए थे और यही चरण वास्तव में भक्त को सदैव ध्यान और शरण लेने के योग्य है। तो इस प्रकार से जैसे सुनते जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु जोर से रोने लगे। ये पहली बार ऐसी चीज थी कि आज तक ये निवाय पंडित कभी रोया नहीं था। निवाय पंडित आज तक किसी के लिए रोया नहीं, हाँ दो बार रोए थे, जब अपने बड़े भाई ने संन्यास लिया था विश्वरूप ने, थोड़ा सा ड्रामा की बात माता पिता को लगे कि नहीं ठीक है उसको जाने दो, मैं हूं आपके संभाल करने के लिए, तब थोड़े से रोए थे। और दूसरी बार रोए थे, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, जब जगन्नाथ मिश्र उनके जो पिता है जब उन्होंने देह त्यागा तब ये निमाय पंडित रोए थे। अन्यथा सबको रुलाते रहते थे निमाय पंडित, जैसे चलते थे तो जितने भी ये डिवोटीज हुआ करते थे वो सोचते थे निमाय पंडित वहां से आ रहा है, रास्ता बदल लो, क्योंकि इनकी खासियत क्या थी, कोई भी आए सामने उसका हाथ पकड़ते थे, गदाधर मुकुंद ये सारे डिवोटीज का हाथ पकड़ के कहते थे बताओ क्या पढ़ाई किया आज, अभी ऐसे वैसे क्वेश्चन करके इतने हरा देते थे, कहते जाओ। मुकुंद को कहते थे तुम्हें तो वैद्य का बिजनेस करना चाहिए, कहा पंडित आई जैसी पढ़ाई कर रहे हो, जाओ गांव गांव में दवाई बांटते रहो। तो मुकुंद बेचारे जाते थे और कहते थे कल फिर से मिलूंगा। तो ये सारे भक्त ऐसे डरते थे कि ये पंडित ये बीच में नहीं आना चाहिए रास्ते में। लेकिन एक खास बात होती थी, जब इनको देखते थे उनका स्पर्श होता था तो उनको लगता था कुछ अद्भुत है ये निमाय। और दूसरी एक चीज थी, ये सब लोग सोचते थे कि इतना विद्वान है, इतना शास्त्रविद है, ये यदि भक्त बन जाए ना तो हम जीवन भर इसका संग नहीं छोड़ेंगे, ये सारे कहा करते थे। तो लेकिन ऐसे निमाय सबको नवदीप में रुला के रखा था। जो जो छोटी जो लड़कियां हैं, हाँ युवतियां हैं, वो जब जाते थे शिवजी का पूजा करने के लिए बहुत सारी पूजा की सामग्री लेकर, तो ये जाकर वो जो माला है खुद पहन लेते थे। कहते किसकी पूजा करने जा रहे हो? वो सारी युवतियां कहते हम ना पति को प्राप्त करने के लिए शिवजी की उपासना करने जा रहे हैं। कहते शिवजी वो मेरा दास है, उनकी क्या पूजा करोगे, मुझे अर्पित करो। और कुछ जो युवतियां भाग जाते थे वो सारे ऑफरिंग्स उनको नहीं देते थे, तो कहते तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जो वृद्ध होगा, जिसकी चार चार स्त्रियां होगी, ऐसा ऐसा। तो कहते थे नहीं नहीं आप अभिशाप मत दो, सारा ऑफरिंग आप ले लो। तो इस प्रकार से, और जो ब्राह्मण जाते थे गंगा स्नान करने के लिए और वो गायत्री मंत्र जप करने के लिए ध्यान में खड़े होते थे, मगरमच्छ की तरह पानी के नीचे जाकर किसी का पाव खींच लेते थे, या फिर जो दो घाट हुआ करते थे, माता जी का स्नान का घाट, प्रभु जी का स्नान का घाट, तो माता जी के कपड़े प्रभु जी की जगह, प्रभु जी के कपड़े माता जी की जगह। तो सब इतने परेशान हो गए थे नवदीप में कि सारे लोग हमेशा कंप्लेन करने जाते थे जगन्नाथ मिश्र के पास और सची माता के पास। और जब घर आते थे तो बिल्कुल साधु की तरह कि कुछ हुआ ही नहीं पूरे दिन। हाँ तो ऐसे निभाए थे, मतलब कहते ना नाक में दम, उन्होंने परेशानी की थी सबको। तो लेकिन यहाँ वही जो सबको रुलाने वाले अभी आज क्या हो रहे हैं, गया में रो रहे हैं, लेकिन एक ही चीज के कारण, कृष्ण के चरण कमलों की महिमा सुनने के कारण। भगवान की महिमा से इतना हृदय ओतप्रोत हो जाना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए रोए। जैसे किसी ने भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे हमें भगवान के लिए रोना चाहिए, लेकिन किसी ने पूछा गुरुदेव कृष्ण के अलावा सबके लिए रोना आता है हमें, तो उन्होंने कहा रोना नहीं आता। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते इसलिए रो कि तुम्हें रोना नहीं आता। इस प्रकार से ये जो निमाय पंडित है पहली बार इतने अपने नयनों से आंसुओं की धारा बहाने लगे और बहुत अधिक रोने लगे भगवान के चरण कमलों को देखकर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब रो रहे थे तो सारे ब्राह्मण अचंभित हो गए कि आज तक हमने गया में किसी व्यक्ति को देखा नहीं जिसने कृष्ण के लिए इतना प्रेम प्रकट किया, सारे भाव आदि प्रकट किए हो। तो सारे ब्राह्मण अचंभित थे, महाप्रभु भगवान के चरण कमलों को ऐसे पकड़ा, रोते जा रहे थे और अचानक उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उठे। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कौन खड़े थे? उनके ईश्वरपुरी पा, उनके जो आध्यात्मिक गुरु है ईश्वरपुरी को देखने मात्र से निमाय पंडित ने उनको दंडवत प्रणाम किया और ईश्वरपुरी ने उनको उठाया, उठाते ही उनका आलिंगन किया और दोनों रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी ऐसे नहीं कि ईश्वरपुरी को पता था कि चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित गया आ रहे, नहीं। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, जिनकी इच्छा के कारण स्वाभाविक रूप से भ्रमण करते करते ईश्वरपुरी गया में पहुंचे, जिस समय निमाय पंडित विष्णुपदी या विष्णु के चरण कमलों का दर्शन कर रहे थे। और जब इन्होंने इनका आलिंगन किया और बहुत आनंदित हुए तो कई सारे श्लोक निमाय पंडित बोलने लगे। निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जतन क्षण देखिलाओ शरण तुमार। उन्होंने कहा वास्तव में आज के दिन मेरी गया यात्रा सफल हो गई है। क्यों सफल हो गई है? क्योंकि इस यात्रा में, इस तीर्थ में आप जैसे महान भक्त का दर्शन मुझे मिला है या मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। और क्योंकि मैं यहां पिंडदान करने के लिए आया हूं, तो इस तीर्थ में एक व्यक्ति को पिंडदान करने से एक ही जो हमारे पितरगण है उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन उससे बढ़कर क्या है कि आप जैसे महान कृष्ण प्रेमी भक्त का दर्शन करने मात्र से हजारों हजारों जो पूर्वज हैं उनका स्वाभाविक रूप से उद्धार हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हो ईश्वर कृपा, आप वास्तव में तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हो। ये तीर्थों की पवित्रता इसलिए है क्योंकि वहां भगवान के शुद्ध भक्तों का निवास है। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त चले जाते हैं तो वो तीर्थ भी अपवित्र होने लगते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनकी उनके चरणों का शरण ग्रहण करते हैं और फिर बहुत विनम्रता के साथ अपने आप को बहुत तुच्छ दिखाते हुए एक विशेष आचरण प्रकट करते हैं। और जो आचरण वास्तव में हर एक शिष्य के लिए उपयुक्त है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु फिर गिर पड़ते हैं ईश्वरपुरी के चरणों में और उनसे दो चीजें उनसे मांगते हैं। ईश्वरपुरी के चरणों में गिरकर उनको कहते हैं, संसार समुद्र है ते उद्धार हमारे, यही आमी देह समर पिलाओ तुम्हारे। उन्होंने कहा है ईश्वरपुरी कृपा करके मुझे इस संसार सागर से मेरा उद्धार करो। और इस संसार सागर से उद्धार करने के लिए मैं क्या दे रहा हूं आपको? मेरा अपना जीवन, मेरा अपना शरीर आपके चरणों में समर्पित करना कर रहा हूं। तो दीक्षा का मतलब क्या है कि वास्तव में दीक्षा मीन्स हम अपना शरीर, अपना जो अस्तित्व है वो गुरु को प्रदान कर रहे हैं। गुरु के चरणों में क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। जैसे हम रोज प्रभुपाद को फुल ऑफर करने आते हैं, फ्लावर्स ऑफर करने का मतलब किसी वैष्णव या गुरु आदि को उसका मतलब होता है कि मैं वही वचन देता हूं कि मैं आपके हैं आदेशों का क्या करूंगा, पालन करूंगा, मैं आपके चरणों में समर्पित सेवक हूं। यह है फ्लावर ऑफर करने का मीनिंग। हम तो बहुत मुद्राओं में फेंक देते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आप फ्लावर रूपी अपना देह डाल दिया ईश्वरपुरी के चरणों में और उनको कहा, उन्होंने कहा, कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान, हमारे कराओ तुम्हें यही चाहे दान। उन्होंने कहा एक ही दान में आपसे चाहता हूं, कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान, मैं कुछ पीना चाहता हूं। कृष्ण के चरण कमलों के अमृत को क्या करना चाहता हूं? पीना चाहता हूं। आप क्या करो, ये कृष्ण प्रेमा भक्ति रूपी ये जो अमृत है आप मुझे पिलाओ। तो ईश्वरपुरी ने देखा साक्षात कृष्ण है। भगवान से चैतन्य सिखाते हैं भगवान होकर कि किस प्रकार से एक जीव को एक शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बल्कि इससे पहले वो उनको मिले थे ईश्वरपुरी को, तो जैसे इन्होंने सरेंडर किया चैतन्य महाप्रभु ने तो ईश्वरपुरी गदगद हो गए। उन्होंने कहा हे निवाय पंडित, तुम तो साक्षात भगवान हो, कैसे संभव है? आपको इतना ज्ञान है और आपका दिव्य स्वभाव है, इससे पता चलता है कि आप साक्षात साक्षात कृष्ण हो। और कल रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा था और आज मैं क्या देखता हूं, आप मेरे सामने प्रकट हो गए हो। बच्चों को प्लीज बाहर ले जा सकते। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उनके चरणों में समर्पित होते हैं और उनको कहते हैं, ईश्वरपुरी उनको कहते हैं, आप मुझसे क्या मंत्र दीक्षा मांग रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप मुझे दीक्षा प्रदान करो, एक मंत्र प्रदान करो। तो ईश्वरपुरी कहते मंत्र, मैं तो अपना जीवन तुम्हें देना चाहता हूं, आप मंत्र की क्या बात करते हो। ईश्वरपुरे चैतन्य महाप्रभु तो वहां उसी स्थान में जो दशाक्षर मंत्र है, गोपाल मंत्र है, वो प्रदान करते हैं। और वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, ये जो गोपाल मंत्र है, इसका उच्चारण कोई डिवोटी करता है तो सो आत्मा कृष्ण के लिए रोना शुरू करता है उस मंत्र के उच्चारण से। चैतन्य महाप्रभु उनसे वो मंत्र स्वीकार करते हैं और ईश्वरपुरी कहते हैं कि मैं जब तुम्हें नवद्वीप में मिला था तब से, पहली मुलाकात से इतने साल हो गए, मैं अभी किसी चीज का विचार ही नहीं करता, कंटिन्यूअसली आप ही मेरे स्मरण में हो। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी उनको गया में दीक्षा प्रदान करते हैं और दीक्षा प्रदान करके निरंतर जो निमाय पंडित है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में उन्मत्त होने लगते हैं। यह समय था गया से लेकर अंत तक चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के लिए रोया करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु दीक्षा के बाद जिस स्थान में निवास कर रहे थे वहां गए और वहां जाकर उन्होंने स्वयं कुकिंग करना शुरू किया, राइस आदि बना रहे थे, कुकिंग कर रहे थे खुद ही। तो ईश्वरपुरी कुछ समय के बाद नाचते हुए गाते हुए हरि नाम में पागल की तरह वहां आ जाते हैं। वहां जैसे आते हैं अपने गुरु को देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते कि आपकी क्या सेवा करूं मैं। तो ईश्वरपुरी कहते कि मैं सही समय में आ गया। जैसे कई बार होते हैं कुछ प्रसाद खा तो हम पहुंच जाते हैं, रोज सही समय में पहुंच गया मैं, कभी मुझे भी कुछ प्रसाद मिलेगा। तो ईश्वरपुरी वैसे हंसते हुए मजाक में कहते हैं कि मैं सही समय में पहुंचा हूं क्योंकि अभी अभी तुमने कुकिंग करके खत्म किया अपना कुकिंग। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में आज जो भाग्य है ये मेरे ऊपर हंस रहा है, बहुत खुश है। और क्यों? क्योंकि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने कहा बच्चे अभी मैं आपको प्रसाद सर्व करता हूं। ईश्वरपुरी कहते नहीं, हम दोनों ना हाफ हाफ करके खाएंगे, आधा हाफ आप ले लो और आधा मैं। महाप्रभु कहते नहीं, आपके लिए पूरा और मैं बाद में फिर से मेरे लिए कुकिंग करूंगा। तो ईश्वरपुरी को प्रसाद सर्व करते हैं, उनको आराम करवाते हैं, उनके चरण में ऑयल लगाते हैं, उनकी मसाज करते हैं और एक आइडियल शिष्य को किस प्रकार से होना चाहिए उसकी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी की सेवा करके प्रदान करते हैं। और फिर ईश्वरपुरी को ये सब प्रदान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन के लिए जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे। और निवास करने के बाद एक दिन चैतन्य महाप्रभु एक एकांत स्थान में जाते हैं और जो ये मंत्र उन्हें प्राप्त हुआ था उसका उच्चारण करने लगते हैं। जैसे उसका उच्चारण करना शुरू किया तो कुछ और उनको आ नहीं रहा था, केवल एक चीज के, कृष्ण के लिए निरंतर वो रो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरे, कोरदि के गेला मोर प्राण तरे छोरे, पाइनो ईश्वर मोर कोरदि के गेला, श्लोक पढ़े प्रभु कांदिते लागिला। तो उन्होंने कहा, वो रोने लगे कि हे कृष्णा, हे मेरे पिता, आप कहाँ हो? आप मेरे प्राणों को, मेरे हृदय को चुरा कर आप कहाँ चले गए हो? मैं सारी जगह में आपको ढूंढ रहा हूं, हे कृष्ण आप कहाँ हो? तो ये सारे स्टूडेंट को छोड़कर एक स्थान में ये सब रो रहे थे कृष्ण के लिए और विरह में पागल होकर जमीन पर गिर रहे थे कृष्ण के प्रेम बांध से विवल होकर। तो जब ऐसे हो रहा था चैतन्य महाप्रभु के साथ, और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके सारे स्टूडेंट आए उनको वापस ले जाने के लिए, उन्होंने कहा मुझे फिर नवद्वीप संसार करने में वापस जाना नहीं है, मैं अपने पारिवारिक जीवन में वापस नहीं जाना चाहता, मैं फिर से संसार नहीं करना चाहता, मैं तो मथुरा जाना चाहता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो जब ऐसा बोल रहे थे तो फिर क्योंकि वो कह रहे थे कि कृष्ण चंद्र ने मेरे प्राण चुरा लिया है, इसलिए मुझे अब ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे निवाय पंडित जब रो रहे थे तो किसी तरह से उनके स्टूडेंट उनको रूम में ले जाते वापस। और फिर दूसरे दिन सुबह जब रात्रि का सूर्य उदित नहीं हुआ था, सोचा भाग जाता हूं इनसे। तो निवाई पंडित वहां से भागते हैं गया से, और थोड़ा दूर जाते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है। तो ऐसे जब भाग गए वहां से, तो वो समय फिर दूर जब जा रहे थे तो फिर से गिर पड़े और रोने लगे कृष्ण के लिए कि मुझे मथुरा जाना है। तब अचानक आकाशवाणी, ये शास्त्र में आकाशवाणी बहुत बार होती है, कृष्ण लीला में भी और गौर लीला में भी। तो आकाशवाणी उनको कहते हैं कि हे गौर हरि, आपको वृंदावन अभी नहीं जाना है, आप वृंदावन बाद में जाओगे संन्यास के बाद। अभी आपको क्या करना है, नवद्वीप जाकर कृष्ण नाम संकीर्तन, ये जो आंदोलन है उसको शुरू करना है। तो ये देवतागण बोल रहे थे, उन्होंने कहा हम सारे तो आपके सेवक हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है आपको रिमाइंड कराना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो जिन्होंने घर छोड़ा था एक प्रकार घमंडी अहंकारी विद्वान के रूप में, पंडित के रूप में, और गया आए थे, गया आकर इतना परिवर्तन हुआ, और जब गया से अपने स्टूडेंट्स के साथ वापस गए तो नवद्वीप के सारे निवासी वेट कर रहे थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में प्रवेश किया तो सब इतने आनंदित हो गए, आनंद के कारण वह सब लोग दौड़ पड़े चैतन्य महाप्रभु का स्वागत करने के लिए, और सब लोग चैतन्य महाप्रभु को हाथ से पकड़कर उनके घर में ले जा रहे थे। लेकिन अभी महाप्रभु या निमाई पंडित किसी से भी उद्धट वचन नहीं बोल रहे थे। कैसे बोल रहे थे, विनम्रता के साथ, इतनी विनम्रता कि ये सारे हैरान हो गए कि इसको क्या हो गया, क्या ऐसी चीज गया में हुई जिसके कारण ये निमाई पंडित इतना परिवर्तन आ गया। और हर एक व्यक्ति से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो वृद्ध हो बालक हो या कोई पुरुष हो, सबसे अत्यधिक विनम्रता के भाव से वो व्यवहार कर रहे थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु सबसे कहते हैं कि वास्तव में मैं गया गया तो आप सबके कृपा के कारण, आप सबके आशीर्वाद के कारण मेरी यात्रा में कोई बाधा नहीं आई और सफलता पूर्वक मैं वापस आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु का ये विनम्रता पूर्व आचरण जब सबने देखा तो सब आनंदित हुए, और चैतन्य महाप्रभु को देखकर दो डिवोटी सबसे अधिक आनंदित हुए, कौन, विष्णुप्रिया जो उनकी पत्नी है, और उनकी माता सची देवी या सची माता। और फिर उन्होंने सबको बताना शुरू किया कि मैं यात्रा में क्या रहा, कैसे रहा, कहां कहां गया। लेकिन फिर उन्होंने अपने कुछ बहुत क्लोज डिवोटीज को चूज किया, पांच छह भक्तों को लेट इवनिंग में कहा कि आप मेरे सामने बैठो, मैं मेरे हृदय का जो सबसे बड़ा दुख है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु या निर्मल पंडित ने कुछ निकटतम स्टूडेंट्स या भक्तों को वहां बिठाया और उनको वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे मेरे बंधु, मैं निरंतर ये जब गया में मैं जब वॉक कर रहा था या चल रहा था तो मुझे कृष्ण का सबसे अधिक स्मरण हो रहा था, और जैसे जैसे उन ब्राह्मणों के द्वारा मैं कृष्ण की महिमा को सुनते गया वैसे वैसे मेरा हृदय कृष्ण की ओर आकृष्ट होता गया। और ऐसा जैसे वह बोलते बोलते उनको गया का स्मरण आया, भगवान के चरण कमलों का स्मरण आया, और उस रात्रि में वहां चैतन्य महाप्रभु रोने लगे अपने घर में, जोर जोर से रोने लगे कृष्ण के विरह में। और सारा जो घर का जो कमरा है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो कमरा उनके आंखों से भर गया, इतना अधिक कृष्ण के विरह में वो रोने लगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो कृष्ण प्रेम का क्रंदन है, मैं सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन कल मैं आप सबको बताऊंगा विशेष रूप से कि क्या ऐसी चीज मुझे पागल कर रही है कृष्ण के प्रति। यदि आप सब लोग मुझे कहां मिलोगे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में, कहां, गौर लीला में, सारे डिवोटीज के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे रमाई, श्रीवास ठाकुर के भाई है जिनको राम भी कहते हैं, कहा कि आप मुरारी को लेके आओ साथ और भक्तों को ले आओ। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में, जिनका घर गंगा नदी के तट पर था, और ये शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी कृष्ण लीला में सुदामा विप्र है, रोज अपना झोले लेकर नवद्वीप में लोगों से क्या मांगते हैं, भिक्षा मांगते, मधुकरी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं अपना सारा दुख, सारी जो व्यथा है वो शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में आप सब मुझे मिलाओ, तो मैं वहां आप सबको मेरा हृदय का दरवाजा खोलकर आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने उन भक्तों को बता देते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु सची माता के वहां घर में निवास करते करते केवल कृष्ण के लिए रो रहे थे। कोथा कृष्ण बलये ठाकुर, बलिते बलिते प्रेम बाढ़े प्रचुर। वो बोल रहे थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ऐसा जितना जितना महाप्रभु बोल रहे थे उतना उतना उनका प्रेम कृष्ण के लिए अत्यधिक बढ़ रहा था। और एक को बहुत चिंता हो रही थी, किसको, सची माता को। क्या चिंता हो रही थी, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जब से ये बालक आया है गया से, वो अभी बहुत विरक्त के वैराग्य के चिन्ह प्रकट कर रहा था, वो अपने पत्नी का चेहरा देख भी नहीं रहा था। तो कभी कभी पूर्ण रूपे ने कृष्ण भावना में मग्न रहते थे, अपना सर नीचे करके, और जिन श्लोकों से कृष्ण का विरह बढ़ता है उन्हीं श्लोकों का उच्चारण करते थे और कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। सची माता को लगा ये ठीक कैसे होगा, हाँ मेरा पहला बेटा भी संन्यास ले लिया है, अभी ये दूसरा भी संन्यास आदि ले ले तो मेरे लिए बहुत कष्ट होगा। तो सोचा पत्नी को सामने बिठाता हूं, पत्नी सामने होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कृष्णा वगैरह क्या हो जाएगा, सरलता से भूल जाएंगे सारे भाव के विकार, है ना। तो वो विष्णुप्रिया हाथ, विष्णुप्रिया का हाथ पकड़ते थे सची माता, लाके कहा रखते थे महाप्रभु के सामने, कहते बैठ यहां। तब ये तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इतने मग्न थे कि पता नहीं कि कितने दिन विष्णुप्रिया के मुख को भी नहीं देखा, और निरंतर कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोते रहते थे और कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन श्लोकों का उच्चारण करते थे, और फिर कभी कभी इतनी जोर से गर्जना करते थे कि विष्णुप्रिया बेचारे भाग जाते थे घर में, छुप जाते थे कि इनके सामने मुझे कभी जाना नहीं है। तो ये देखकर सची माता को लगता है कि ये मेरा बालक निश्चित रूप से मुझे एक दिन छोड़ देगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो कृष्ण प्रेम विरह है, कृष्ण के प्रति जो विरह की भावना है वो उन्होंने प्रकट की थी गया में, और फिर वही जो भावना कंटिन्यू उनकी होती है जब वो नवद्वीप में निवास करते हैं। तो कल हम प्रयास करेंगे आगे की लीलाएं किस प्रकार से ये न्यूज चैतन्य महाप्रभु की सब जगह फैले। श्री श्री राम गोविंद के पंच तत्व के समवेत गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीताय गौर सुंदर के, श्री कृष्णदास कविराज के, श्री वृंदावन दास ठाकुर के, श्री प्रभुपाद के, श्री गौर प्रेमानंद के।